श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 8 पिंगला की कथा श्लोक संख्या 2 और उसके आगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि यदु महाराज अवधूत ब्राह्मण को मिले और अवधूत ब्राह्मण उनको बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे संसार में भ्रमण करते करते प्रकृति में अलग अलग चीज़ों को देखते हुए क्या क्या सीखा। तो कल हमने कबूतर से क्या उन्होंने सीखा ये सुना, आज उसके आगे वो वर्णन करते हैं। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदच्छयैवा पतितम ग्रसेदा जगरो प्रियः। Following the example of the python, one should give up material endeavors and accept for one's maintenance food that comes of its own accord, whether such food be delicious or tasteless, ample or meager. अजागर क्रिया, अजागर मतलब अजगर जिसको हिंदी में बोलते हैं, अजगर python। तो उससे उन्होंने क्या सीखा कि व्यक्ति को बहुत अधिक अत्यधिक भौतिक परिश्रम नहीं करना चाहिए अपने शरीर की को मेंटेन करने के लिए। जो भी सरलता से कार्य करने से उपलब्ध हो जाए, चाहे वो बहुत टेस्टी फूड हो चाहे टेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा हो कम हो, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो अजगर वो एक स्थान पर रहता है और जब दैव यानी कि भाग्य के विधान से कोई जानवर उसके नज़दीक आता है तो वो उसको खाता है, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम नहीं करता है शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो उससे उन्होंने ये सीखा कि इसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। इफ़ एट एनी टाइम फूड डज नॉट कम देन ए सेंटली पर्सन शुड फास्ट फॉर मैनी डेज विदाउट मेकिंग एंडेवर। ही शुड अंडरस्टैंड दैट बाई गॉड्स अरेंजमेंट ही मस्ट फास्ट। Thus following the example of the python, he should remain peaceful and patient. तो भौतिक संसार में कष्ट और सुख आते रहेंगे, तो जो साधु पुरुष है उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि भौतिक जब दुख आए तो उसको सहन करें और जब सुख के विषय आए तो भी सहन करें। ऐसा नहीं कि जब सुख के अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, तो सुख प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास करें। तो वो व्यक्ति जब दुख के अवसर आएंगे तो दुखी होगा ही, क्योंकि वो आसक्त है सुख दुख से। इसलिए भगवान हमारे कर्म के विधान के अनुसार हमें सुख दुख देते हैं, ये समझ करके हमें संभाव रखना चाहिए। A saintly person should remain peaceful and materially inactive, maintaining his body without much endeavor. Even though possessed of full sensual, mental and physical strength, a saintly person should not become active for material gain, but rather should always remain alert to his actual self-interest. एक साधु पुरुष, उसके पास बहुत शक्ति है, बुद्धि है, बहुत अवसर हैं करियर बनाने का, materially advanced होने का बहुत अवसर हैं, लेकिन फिर भी वो अत्यधिक प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे प्रयास कहाँ करने। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करता मतलब वो आलसी रहता है, उसका ये अर्थ नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। जो लोगों की रात्रि होती है उसमें वो जगता है, यानी कि वो भौतिक प्रगति करने के लिए निश्चेष्ट होता है। भौतिक प्रगति करने के लिए एक साधु पुरुष अधिक उद्यमी, अधिक प्रयत्नशील नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील होता है, आलसी नहीं होता है, क्योंकि समय तो उतना ही है, 24 घंटे ही हैं, शक्ति भी हमारी सीमित है, तो उसको सोच समझ करके हमको लगाना होगा। तो ये जो भौतिक सुख दुख हैं, वैसे भी वो भाग्य के अनुसार जितना है उतना मिलना ही है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और भौतिक सुख प्राप्त करके भी जीवन की सिद्धि नहीं है, क्योंकि वो सब क्षणिक हैं, ये जानते हुए और मेटेरियल मेंटेनेंस सबका अपने कर्म के अनुसार भाग्य के अनुसार होना है, हमें एंडेवर करना है, ऐसा नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं अजागर, तो थोड़ा सा एंडेवर तो अजागर भी करता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृखा, शेर भी थोड़ा सा एंडेवर करता है, ऐसे पाइथन भी, कोई पास में जानवर आया तो उसको उसको कुछ कुछ तो एंडेवर करना पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन कम से कम, और वो भी अपने आश्रम के अनुसार। जैसे कोई अगर ब्रह्मचारी सन्यासी है तो उसका शरीर मेंटेनेंस कैसे होता है, वो जो भी उसको भगवान भेजते हैं, इन द सेंस भगवान तो सबको ही भेजते हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी या सन्यासी या वानप्रस्थ, तीनों आश्रम वाले, वो स्वयं किसी वर्ण के जो गतिविधियां हैं जीविकोपार्जन की, उसमें संलग्न नहीं होते हैं, वो केवल प्रचार में या आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहते हैं, और दान से जो भी उनको प्राप्त होता है उससे वो अपना गुजारा चलाते हैं। ये उनकी उनकी रीति है शरीर को मेंटेन करने की। जो गृहस्थ हैं उसमें भी अलग अलग हैं, फिर ब्राह्मण, स्वभाव, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सब का भी अपना अलग अलग तरीका है। एक ब्राह्मण जो है उसके जीविकोपार्जन के तरीके हैं, जैसे कि याजन, पाठन, प्रतिग्रह, यानी कि शिक्षा देना शास्त्रों की, यज्ञ इत्यादि कराना, और दान स्वीकार करना, ये उसके तरीके हैं। और उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो ये भी नहीं करते हैं, जो केवल जो अनाज गिरा रहता है जमीन पर खेतों में या किसी दुकान पे, उसको जाकर के कलेक्ट करते हैं एक बार का, एक समय का, दैट्स इट। तो ऐसे अलग अलग रीति है। क्षत्रिय हैं वो रक्षण करते हैं और फिर टैक्स लेते हैं, और वैश्य वो कृषि करते हैं, गोरक्षा इत्यादि। तो इससे सबकी अपनी अपनी अलग रीति होगी, लेकिन ये सार जो है वो सभी के लिए है कि अनावश्यक चिंता और अनावश्यक एंडेवर नहीं करना चाहिए। सार रूप में सभी के लिए ये शिक्षाएं हैं, कि ऐसा नहीं कि हम सोचें कि केवल मेरे अपने उद्यम से मैं अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढा आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि मेरे ही अपने हाथ में है मेरा सब कुछ भौतिक जो भी मुझे प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर पांच तथ्य हैं और उसमें से एक है दैव, परमात्मा, उनकी अनुमति, जो कर्मफल के अनुसार हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि कैसे आप शरीर को मेंटेन करेंगे, लेकिन आज हमने जो आधुनिक सभ्यता बनाई है उसमें हर व्यक्ति बहुत चिंतित है कि उसको कैसे अपना शरीर को मेंटेन करेगा, क्योंकि हम आज अपने शरीर को मेंटेन करने से संतुष्ट नहीं हैं। हम आसुरी बुद्धि के द्वारा ग्रसित हैं कि अनावश्यक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। नहीं तो शरीर की मेंटेनेंस के लिए जानवर भी चिंतित नहीं हैं, तो हमें क्यों चिंतित होने की ज़रूरत है। वो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है कि थोड़ा सा एंडेवर करना की जरूरत, थोड़ा सा। चिड़ियां हैं वो भी एंडेवर करती हैं, थोड़ा सुबह उठ के चलती हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है कि क्या होगा, इंटरव्यू में पास होंगे कि नहीं होंगे, है ना, ये चिंता उनको नहीं है। उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, करेक्ट। सुबह उठते हैं उनको पता है, रात को सोते हैं तो उनको चिंता नहीं होती कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमको चिंता होती है कि क्या कल को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब रखेंगे क्या होगा। ये सब हमारे द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम्स हैं। भगवान के सिस्टम में किसी को उनके शरीर को मेंटेन करने के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सो ये सार रूप में हम सभी को समझना चाहिए। इवन आज भी यदि आसुरी सभ्यता है तो भी जो भक्तगण हैं, जो इस बात को समझते हैं, उन्हें भी इस बात को समझकर भगवान पर श्रद्धा रख करके अपनी जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो कर्मफल के अनुसार जो मिली है उसके अनुसार कुछ एंडेवर करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की बलि चढ़ जाए। सरल लोगों की देखा देखी नहीं भागना चाहिए, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, नहीं, मुझे क्या ज़रूरी है, उसके लिए मुझे कम से कम कैसे मिल जाए। जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ही कम प्रयास करके अपना गुजारा चला लेगा, ये ज्यादा बुद्धि का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन आज उल्टा होता है, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो ज्यादा ही अपने को बिजी रखता है, करेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो सोचता है नहीं मुझे तो और ज्यादा आगे जाना है, मुझे और ग्रीड, ज्यादा बुद्धिमान से उसको और ज्यादा आवश्यकता है उसकी, मुझे सबसे बड़ा भोगी बनना है। होना चाहिए उल्टा, जो ज्यादा बुद्धिमान है उसे कम से कम प्रयास में अपना भौतिक शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए। जैसे मनुष्य है वो जानवर से ज्यादा बुद्धिमान है, तो जैसे गधा है तो गधे को तो फिर भी काफी प्रयास करना पड़ता है ना, तो आदमी गधे से ज्यादा बुद्धिमान है तो उसे देखना चाहिए अरे गधा इतना काम कर रहा है मैं कैसे कम से कम में कर लूं, इसलिए बुद्धि दी गई है। लेकिन हम बुद्धि का दुरुपयोग करके हम सोचते हैं हम गधे ऐसे सुना है हम तो बहुत बुद्धिमान है, गधा 12 घंटे करता है हम 15 घंटे करेंगे, तो ये हमारी बुद्धि का दुरुपयोग है। ये रियली आप सोचिए इस बात को, हम इतने बुद्धिमान, भगवान ने हमको इतनी क्षमता दी है मनुष्य को, कितना आसानी से हम अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। क्यों दी है? क्योंकि जानवर देखो रात को भी वो खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, गाय जो है वो रात को भी बैठ के जुगाली करती रहती है, उसका बहुत समय आता है इसमें खाने में, फिर उसको चबाने में चुबाने में बहुत, देखा है कि सारे दिन खप खप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हमको मनुष्यों को ऐसी जरूरत नहीं है, वो बहुत सरलता से अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमें सीखना है अजागर से। फिर ए सेंटली सेज इज हैप्पी एंड प्लीजिंग इन हिज एक्सटर्नल बिहेवियर वेयर एज इंटरनली ही इज मोस्ट ग्रेव एंड थॉटफुल। बाह्य रूप से वो जोवियल लेकिन अंदर से बहुत गंभीर होता है, विचारवान होता है। आजकल लोग जो हैं वो विचारवान नहीं है, कार्टून देख देख के क्या विचारवान बनेंगे, वीडियो गेम खेलते खेलते कौन कैसे कोई विचारवान बन सकता है। आप कहीं भी जाइए, लोग जो खेल खेलते हैं उसमें क्या क्या है, उससे कैसे कोई विचारवान बनेगा, उससे शूट कर रहे हैं कुछ वो अजीब अजीब से, एक बहुत भारी कोई चीज़ वो जा रही है जैसे उसको ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हो रही है कहाँ से गई, इट्स जस्ट फुलिशनेस। तो ऐसे नहीं, उसको विचारवान होना चाहिए। देखिए विचारवान देख रहा है वो हर चीज़ को, कबूतर को देखा उससे उसने कुछ सीखा है ना, लेकिन ये सीखने के लिए जरूरी है पहले हम सुने तब हम वो देखने पर समझ पाएंगे है ना। इसलिए नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए तब हम समाज संसार में चलते हुए उससे कुछ सीख पाएंगे। फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सोलन रिवर्स रश इन टू द ओशन एंड ड्यूरिंग द ड्राई समर द रिवर्स नाउ शैलो सिवियरली रिड्यूस देयर सप्लाई ऑफ वाटर येट द ओशन डज नॉट स्वेल अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन नॉट डज इट ड्राई अप इन द हॉट समर। समुद्र में बारिश के समय में बहुत पानी आता है नदियों के द्वारा, उसमें भी समुद्र जो है वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाता है, वो अपनी सीमाओं में ही रहता है, और गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं आता, बहुत कम आता है, तो भी समुद्र सूखता नहीं है। इन द सेम वे सेंटली डिवोटी हु हैज एक्सेप्टेड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एज द गोल ऑफ हिज लाइफ समटाइम्स विल रिसीव बाय प्रोविडेंस ग्रेट मटेरियल ऑपुलेंस एंड समटाइम्स ही विल फाइंड हिमसेल्फ मटेरियली डेस्टिट्यूट। हाउएवर सच अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट रिजॉयस इन अ फ्लरिशिंग कंडीशन नॉर इज ही मोरोस व्हेन पॉवर्टी स्ट्रिकन। उसी प्रकार से एक भक्त जिसने भगवान की शरण ली है तो वो जानता है कि कभी कभी भाग्य के विधान के अनुसार कभी बहुत सुख मिलेगा और कभी बहुत दुख मिलेगा, तो जब बहुत सुख का अवसर होगा तो वो बहुत आनंदित नहीं होगा, जानेगा ये सब क्षणिक है, इससे ये आनंद नहीं है मेरा, और जब भौतिक दुख होगा तो दुखी नहीं होगा क्योंकि जानेगा कि ये दुख मेरा नहीं है शरीर है, इसलिए उसमें वो दुखी नहीं होगा। वन हु हैज फेल्ड टू कंट्रोल हिज सेंसेस इमीडिएटली फील्स अट्रैक्शन अपॉन सीइंग ए वुमेन्स फॉर्म विच इज क्रिएटेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इंडीड व्हेन द वुमेन स्पीक्स विद एंटाइसिंग वर्ड्स स्माइल्स कॉकेटिशली एंड मूव्स हर बॉडी सेंसुअसली हिज माइंड इज इमीडिएटली कैप्चर्ड and thus he falls blindly into the darkness of material existence just as the moth maddened by the fire rushes blindly into the flames। abhi usne dusra aage kya jo patanga hota hai patanga usse kya sikha to patanga jo hai jo lo hoti hai lo flame uske roop ko dekh karke bahut aakarshit hota hai पतंगा और उसकी तरफ भागता है। उसी प्रकार से मूर्ख पुरुष एक स्त्री के रूप को देख करके आकर्षित होता है, उसकी आवाज उसको शहद से ज्यादा मीठी लगती है कुछ समय के लिए, जब तक तो कोर्ट केस शुरू नहीं होता, लड़ाई झगड़ा शुरू तब तक। उसके मुस्कान और सभी बॉडी के मूवमेंट्स वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे एक पतंगे के लिए वो मृत्यु सिद्ध होती है लोगों के प्रति उसका आकर्षण, उसी प्रकार से एक पुरुष के लिए एक स्त्री के प्रति आकर्षित होना वो इस भव बंधन में उसके बंधने की अवधि को और बढ़ाता है, ये उसकी हथकड़ी है। तो अगर कोई पुरुष स्त्री से आकर्षित हो रहा है मतलब समझ लीजिए कि उसको और बहुत यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी हर एक इंद्रिय का एक एक उदाहरण है जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारी एक एक इंद्रिय कैसे हमको फंसाती है। तो ये जो आँख है इसको फ्लिकरिंग आइज, चपलद्रिक कहा गया, चपलद्रिक या आँख बड़ी फ्लिकरिंग है, हमें ज़्यादातर रूप देखने के लिए लाइट रहती हैं, है ना। तो ये हमको ऐसे ही फंसा देती हैं जैसे कि वो पतंगा रूप को देख करके मर जाता है। तो एक साधु पुरुष ने उन्होंने ये सीखा कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, ये जो चपल दृक है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो हम भी पतंगे की तरह फंसेंगे। ए फुलिश पर्सन विद नो इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन इज इमीडिएटली अराउज्ड एट द साइट ऑफ ए लस्टी वुमन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद गोल्डन ऑर्नामेंट्स फाइन क्लोथिंग एंड अदर कॉस्मेटिक फीचर्स। Being eager for sense gratification, such a fool loses all intelligence and is destroyed, just like the moth who rushes into the blazing fire. तो एक मूर्ख व्यक्ति एक कामुक स्त्री को जब देखता है तो कामुक स्त्री क्या है, वो भी अपने को इसी प्रकार से प्रस्तुत करती है जिससे कि वो कामुक पुरुष को आकर्षित कर सके। एक जो चरित्रवान स्त्री है वो अपने शरीर का व्यापार नहीं करती है और इस प्रकार से अपने को प्रस्तुत नहीं करती है कि कामुक व्यक्ति आकर्षित हो, लेकिन जो कामुक स्त्री है कामुक व्यक्ति वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसी कामुक स्त्री जो सुसज्जित है उसको देखते ही तुरंत उसके काम वासनाएं भड़कती हैं और उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो ऐसे ही जैसे कि वो पतंगा अग्नि की तरफ भागता है वो ऐसे ही उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए ललायत हो जाता है और वहीं उसका सत्यानाश सर्वनाश वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अ सेंटली पर्सन शुड एक्सेप्ट ओनली एनफ फूड टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ही शुड गो फ्रॉम डोर टू डोर। और अन्य भी हैं, आँख से हम कैसे फंसते हैं ये है, फिर जीवा मछली जो है वो जीवा की वजह से फंसती है, बेट है ना, कांटे के उसके जो मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा होता है उसमें वो खाना लगाते हैं और वो मछली जो है वो खाने के लिए ललायत होती है और उससे उसकी मृत्यु होती है, फंस जाती है। उसी प्रकार से हिरण वो अपने कानों से फंसता है, तो जो शिकारी है बहुत सुंदर वो बांसुरी की आवाज़ निकालता है जिससे वो सब हिरण आगे खड़े हो जाते हैं और फिर वो शिकारी उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार से हाथी वो कैसे फंसता है, वो जननेन्द्रिय से फंसता है। तो एक ट्रेंड हथनी तो उसको वो उसको छोड़ते हैं तो हाथी जो है वो यौन सुख के लिए पीछे भागता है और अलग अलग जगह गड्ढे खोदे होते हैं जिसमें कि घास बिछाई होती है, तो वो जो हथनी होती है उसको पता होता है कहाँ कैसे ले जाना है, तो आगे भागती है और हाथी पीछे पीछे भागता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और इस तरह से बंदी बना लिया जाता है। तो ये सब इंद्रियां हमको एक एक करके ऐसे बंदी बनाती हैं। फिर मधुमक्खी से क्या सीखा अवधूत ब्राह्मण ने? मधुमक्खी क्या करती है, बहुत सारे फूलों से थोड़ा थोड़ा पराग इकट्ठा करती है। तो उसी प्रकार से एक जो भिक्षुक है, भिक्षुक यानी जो भिक्षाटन से अपना जीविकोपार्जन चलाता है, उसे अलग अलग गृहस्थ लोगों से थोड़ा थोड़ा याचना करना चाहिए, केवल उतना जितना उसके उदर भरण के लिए एक समय के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो जहाँ टेस्टी फूड मिल रहा है जिस घर में, उसमें बैठ जाए, हर रोज वहीं खाए, क्योंकि वो ललायत है अपनी जीवा से। तो वो एक भिक्षुक का कार्य नहीं है, इसलिए उसको मधुकरी बोलते हैं। मधुकरी जैसे मधुमक्खी थोड़ा 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 लेती है, एक के ऊपर बर्डन नहीं बनती है, तो उसी प्रकार से एक भिक्षुक को थोड़ा 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 कुछ घर से लेना चाहिए, बस जितना उतना जितना कि भरण के लिए पूरा हो जाए। फिर ए सेंटली पर्सन शुड नॉट थिंक दिस फूड आई विल कीप टू ईट टू नाइट एंड दिस अदर फूड आई कैन सेव फॉर टुमारो। इन अदर वर्ड्स, ए सेंटली पर्सन शुड नॉट स्टोर फूड स्टफ्स एक्वायर्ड बाई बैगिंग, रादर ही शुड यूज हिज ओन हैंड्स एज हिज प्लेट एंड ईट वॉट एवर फिट्स ऑन देम। हिज ओनली स्टोरेज कंटेनर शुड बी हिज बैली एंड वॉट एवर कन्वीनियंटली फिट्स इन टू हिज बैली शुड बी हिज स्टॉक ऑफ फूड। दस वन शुड नॉट इमिटेट द ग्रीडी हनी बी हु ईगरली कलेक्ट्स मोर एंड मोर हनी। तो एक प्रकार की जो ये होती है मधुमक्खी, तो क्या बहुत लोभ के कारण क्या होता है, एक फूल के पास गई, पराग इकट्ठा किया, दूसरे के पास गई, पराग इकट्ठा किया, ऐसे दिन भर व्यस्त रहती है, क्योंकि शाम में क्या होने वाला है, फूल जो है वो बंद हो जाएंगे, तो इसलिए वो ऐसे करते रहते करते रहते करते रहते करते, उसको संतुष्टि नहीं होती, और आखिर में क्या होता है, अंत में शाम को फिर एक फूल से पराग जमा करती है और वो लोटस जो है वो बंद हो जाता है और उसी के अंदर वो मर जाती है। तो इस प्रकार से उसने देखा कि दूसरी शिक्षा कि ऐसा हमें लोभ नहीं करना चाहिए जिससे कि हम अपनी ही मृत्यु कर लें। और एक भिक्षुक को कैसे होना चाहिए, हाथ ही उसकी प्लेट होनी चाहिए और पेट उसका स्टोरेज टैंक, जितना पेट में आए उतना। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांगने के चक्कर में, डोनेशन कलेक्ट करने के चक्कर में अपने लिए वो बढ़िया फैसिलिटीज, घर और सब। तो ये ढोंगी साधु ऐसा करते हैं, वो साधु के वेश में आराम का जीवन जीते हैं। लोग गृहस्थ लोग जो हैं वो उनको दान देते हैं और वो उससे अपना इंद्रिय भोग करते हैं। तो जो भिक्षुक है उसे अपने इंद्रिय भोग के लिए इतना सावधान रहना चाहिए कि तनिक भी इंद्रिय भोग के लिए वो कार्य नहीं करे, कल के लिए बचाना, परसों के लिए बचाना। तो ये इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, यानी उसका जो साधु का जो जीवन है वो दूसरों पे आश्रित होने के लिए नहीं है। वो जो बैगिंग, वो जो भिक्षाटन शास्त्रों में जो बताया गया है, वो उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से केवल परोपकार के लिए अपना जीवन जीते हैं, इसलिए उनको छूट है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य नहीं करें, अन्यथा और किसी को नहीं। जिनका जीवन इंद्रिय भोग से बिल्कुल अलग है, शुद्ध जीवन है और परोपकार के लिए, प्रचार कार्य के लिए जो लोग अपना जीवन पूरी तरह से दिन रात लगाते हैं, उन लोगों के लिए भिक्षाटन अलाउड है, नहीं तो नहीं। इवन गृहस्थों के लिए भी, केवल ब्राह्मण, और उसमें भी केवल वो ब्राह्मण जो इस प्रकार से बिल्कुल अनासक्त है, उसके लिए ये भिक्षाटन अलाउड है। ए सेंटली पर्सन शुड नेवर टच अ यंग गर्ल, इन फैक्ट ही शुड नॉट इवन लेट हिज फुट टच अ वुडन डॉल इन द शेप ऑफ ए वुमन। बाई बॉडीली कॉन्टेक्ट विद ए वुमन ही विल श्योरली बी कैप्चर्ड बाई इल्यूजन, जस्ट एज एन एलिफेंट इज कैप्चर्ड बाई द शी एलिफेंट ड्यू टू हिज डिजायर टू टच द टच हर बॉडी, टू टच सेंसेशन। ये जो आग का हमने देखा पतंगा, फिर जीवा मछली, और ये त्वचा है, जेनिटल जो है वो किस तरह से काम करते हैं, त्वचा, टच सेंसेशन उनका बेसिस है। तो ये जो टच सेंसेशन है, तो उससे उदाहरण ले, उससे हमें सीखना है किससे, हाथी से। तो हाथी वो इस प्रकार से ही फंसता है। ए मैन पजेसिंग इंटेलिजेंट, हाँ, तो वो टच सेंसेशन, तो इसलिए इवन लकड़ी की एक स्त्री की प्रतिमा है उसको भी टच नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा डेंजरस है ये स्त्री पुरुष आकर्षण, इतना ज्यादा गहरा है कि इतना सावधान रहने के लिए कहा गया है कि इवन लकड़ी की प्रतिमा को टच नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना लकड़ी या आजकल प्लास्टिक फाइबर, सो दुकानों में आप देखते हैं, दुकानों में ऐसे फाइबर की फॉर्म बनाते हैं, इवन वो फॉर्म देखने से भी हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, काम वासनाएं प्रेरित हो सकती हैं। तो इतना सजग रहने के लिए कहा गया है। ए मैन पजेसिंग इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ट्राई टू एक्सप्लॉइट द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ ए वुमन फॉर हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन। जस्ट एज एन एलिफेंट ट्राइंग टू एंजॉय अ शी एलिफेंट इज किल्ड बाय अदर बुल एलिफेंट्स ऑल्सो एंजॉइंग हर कंपनी, वन ट्राइंग टू एंजॉय अ लेडीज कंपनी कैन एट एनी मोमेंट बी किल्ड बाय हर अदर लवर्स हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो कभी भी किसी स्त्री को इंद्रिय भोग के लिए एक्सप्लॉइट करने का करना नहीं चाहिए। स्त्री वही भगवान की सेविका है। इस दृष्टि से एक व्यक्ति जो आज हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, उसे शास्त्रों के आधार पे, धर्म के आधार पर पत्नी के रूप में स्त्री को स्वीकार करना चाहिए, धर्म पत्नी, धर्म करने के लिए वो स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, ना कि अपने इंद्रिय का भोग करने के लिए। तो यहां पर उदाहरण है कि जैसे इस प्रकार से जो आजकल हम देखते हैं लव अफेयर्स, तो उसमें ये बहुत संभावना है कि उसके जो और लवर्स हैं वो आपको मार सकते हैं, और ऐसा होता है कॉलेज लाइफ में, बहुत कॉलेज लाइफ में एंड एल्सवेयर आल्सो, दिस इज नॉट अनकॉमन, ऐसा होता है। अ ग्रीडी पर्सन एक्यूमुलेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी विद ग्रेट स्ट्रगल एंड पेन, बट द पर्सन हु हैज स्ट्रगल्ड सो मच टू एक्वायर दिस वेल्थ इज नॉट ऑलवेज अलाउड टू एंजॉय इट हिमसेल्फ और गिव इट इन चैरिटी टू अदर्स। The greedy man is like the bee who struggles to produce a large quantity of honey, which is then stolen by a man who will enjoy it personally or sell it to others. No matter how carefully one hides his hard-earned wealth or tries to protect it, there are those who are expert in detecting the whereabouts of valuable things and they will steal it. तो दो प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती हैं जो पराग इकट्ठा करती हैं अलग अलग फूलों पर जाकर के, और एक प्रकार की मधुमक्खी होती हैं जो पराग वो लेके आई दूसरी मधुमक्खियां, उसमें से फिर शहद बनाती हैं। तो वो जो शहद बनाती हैं, तो वो शहद बनाती रहती हैं, 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 फिर अंत में क्या होता है, एक आदमी आता है, वो उस छत्ते में से जितना भी उन्होंने शहद इकट्ठा किया वो सब लेके चला जाता है। तो ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति धन इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, फिर मोदी आता है डिमोनेटाइजेशन करता है, या तो कोई और प्रकार के सोफिस्टिकेटेड बैंक रोबर्स आते हैं, बैंक में सीधा आपका अकाउंट में से सीधा पैसा गायब कर लेते हैं, या तो बड़े बड़े मॉल्स वाले बिजनेसमैन बड़े क्लेवर वो आपको एंटाइस करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सस्ते में है, सस्ता इसके सेल्स डिस्काउंट, या तो बैंक वाले ऑफर निकालते हैं, है ना, लोन ले लो, ये ले लो, ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आपकी ये सारी जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो सब चुरा के ले जाते हैं। तो उसने ये भी सीखा मधुमक्खी से, दूसरे प्रकार की मधुमक्खी से, कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करोगे तो लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि हम बचा के रख लेंगे कहीं ना कहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जो चोर हैं वो बहुत क्लेवर होते हैं जानने के लिए कि कहाँ है पैसा छुपा हुआ, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन यही है ना, तो मधुमक्खी उसको बहुत छुपा के रखती है अपने छत्ते में, लेकिन जो मधु जिनका काम ही है मधु इकट्ठा करना उसको बेचना, तो वो लोग तो ये ढूंढते रहते हैं कहाँ है मधुमक्खी का छत्ता, कहाँ है, उनका काम ही ये है ढूंढना छत्ता। तो उसी प्रकार से जो लुटेरे हैं अलग अलग रूपों में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आप कितना भी उसको संभाल के रखेंगे वो पैसा निकालने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक क्यों एकत्रित करने का, मेहनत करो एकत्र करो और फिर कोई दूसरा उसको ले जाएगा। इसलिए आवश्यकताएं कम रख करके होल्ड, डोंट होल्ड द मनी, पैसे को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा कुछ आवश्यक है कुछ इकट्ठा करना, थोड़ा कुछ इमरजेंसीज के, लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ उनको तो वो भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि अगर इकट्ठा करेंगे धन तो संभावना है कि हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। जैसे वो मधुमक्खी का वो जो जो मधु करते हैं तो वो सब मधुमक्खियाँ मर जाती हैं ना, बहुत सारी मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। क्यों मर गई वो? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा शहद इकट्ठा किया इसलिए मर गई वो। तो उसी प्रकार से आप आवश्यकता से ज़्यादा धन इकट्ठा करोगे तो धन लेने के चक्कर में संभावना है कि आपको मार दिया जाएगा धन लेने के लिए, तो वो अपनी मृत्यु का ही कारण बन जाता है ना। आप उसी प्रकार देखते हैं सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को जीवन समर्पित करने के लिए अपना सभी मंत्री का पद छोड़ करके भागे, तो बड़ी मुश्किल से भागे क्योंकि वो जो वहाँ का शासक था उनको जाने नहीं दे रहा था, बंदी बना लिया था। तो कैसे न कैसे कुछ उनके जो भाई थे उन्होंने कुछ सोने की मोहरे छोड़ के गए थे उसको यूज़ करके वो सब ब्राइब दे करके वो सबको और वहाँ से भागे। तो साथ में एक नौकर उन्होंने ले लिया रास्ते में कुछ हेल्प के लिए। तो वो नौकर ने कुछ 8 सोने की मोहरे जो हैं 8 या 9 वो चुरा करके अपनी जेब में रख ली थी। तो वो फिर रास्ते में गए, एक जगह पर रुके, वहाँ पर एक कोई स्थान था यात्री निवास, कोई रुकने की जगह थी, तो वहाँ पर वो रुके। तो वो जो यात्री निवास वाला व्यक्ति था उसके पास एक व्यक्ति था एस्ट्रोलॉजर, जो जो भी यात्री आता था रुकने के लिए उसके बारे में पता लगाता था कि इसके पास कितने पैसे हैं, और उसको फिर रात को मार करके वो सारा पैसा ले लेता था। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा बड़ा ही शंकाजनक लगा उनको, जो यात्री निवास का जो वो था मालिक, तो उनको लगा कुछ गड़बड़ लगता है, ये बहुत ज़्यादा मधुर बहुत ज़्यादा विनम्र स्वभाव था, ऐसा नॉर्मल नहीं लगा उनको कुछ। तो उन्होंने अपने उससे पूछा नौकर से, तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? बोला हाँ, मैंने वो 9 सोने की मोहरे चुरा के रख ली थी। बोले यही, इसको वापस दे दो उसको जल्दी से, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से आवश्यकता से अधिक धन धन जो है वो हमारी मृत्यु का कारण बनता है। जस्ट एज ए हंटर टेक्स अवे द हनी लेबोरियसली प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बी, सिमिलरली सेंटली मेंडिकेंट सच एज ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज आर एंटाइटल्ड टू एंजॉय द प्रॉपर्टी पेनस्टेकिंगली एक्यूमुलेटेड बाय हाउस होल्डर्स डेडिकेटेड टू फैमिली एंजॉयमेंट। अभी हंटर से क्या सीखा उन्होंने, जो मधु इकट्ठा करता है। तो मधुमक्खियां बहुत परिश्रम करके मधु इकट्ठा करती हैं, लेकिन उसको एंजॉय कौन करता है? जो वो मधु ले जाने वाला है वो। तो जो भी गृहस्थ परिश्रम करके धन एकत्रित करते हैं उसको एंजॉय करने का अधिकार किसका है? भगवान का। ब्रह्मचारी सन्यासी का नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी क्योंकि अपने इंद्रिय भोग से हमेशा विलग रहते हैं इसलिए वो उस धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए गृहस्थ भक्त जो भी पैसा इकट्ठा करें उन्हें उसका सबसे पहला अधिकार है उसके ऊपर सन्यासी ब्रह्मचारी का, उन्हें वो दान में देना चाहिए, और वो ब्रह्मचारी सन्यासी सही ब्रह्मचारी सन्यासी है होना चाहिए तो वो उसको भगवान की सेवा में लगा पाएगा। यानी कि जो भी हमारी हार्ड अर्न मनी है वो हमारे भोग के लिए नहीं है, जो भी हम परिश्रम से जो भी हम कमाते हैं उसका अधिकार हम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भी हम मेहनत करके कमाते हैं वो हमारे भोग के नहीं है। हमें पहले तो अपने मेंटेनेंस के लिए केवल उतना ही कमाना चाहिए जितना जरूरी है, और अगर भाग्य से अधिक मिल भी जाए तो भी उसको साधुओं के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो ये है, और इसलिए और ब्रह्मचारी सन्यासी उनको क्या सीखना है कि वो जो गृहस्थ मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए है, क्योंकि सब भगवान की संपत्ति है। इसलिए कोई जो उनको दान दे रहा है वो उनको दान नहीं दे रहा है, वो भगवान को दान दे रहा है उनके माध्यम से। इसलिए उनका ये कर्तव्य है कि वो एक पैसा भी अपने इंद्रिय भोग में उसको यूज नहीं करें, इंद्रिय भोग में केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए मिनिमम एक साधु एक वैरागी को जैसे होना चाहिए उस प्रकार से केवल ले सकते हैं, और प्रचार कार्य में उसको लगाना चाहिए। उस जो भी धन संपत्ति उनको दान में करती, वो दान गृहस्थ दे रहे हैं उनके लिए, उनके इंद्रिय भोग के लिए नहीं दे रहे हैं, वो भगवान की संतुष्टि के लिए दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति इस प्रकार से चलती है। तो दोनों की तरफ से जानने की जरूरत है। आज तथाकथित भिक्षुक केवल इंद्रिय भोग के लिए ये वेश धारण करके भिक्षा लेते हैं, है ना। तो इसलिए श्रद्धा लोगों की हट गई है, और जो दान देने वाले हैं वो भी सही चेतना में दान नहीं देते हैं। तो जैसे कि कमाते हैं खूब, और एक फूटी कोड़ी दान में देते हैं, है ना, जो बिल्कुल वेस्ट चीज़ है उसको जाकर के दान देते हैं। लेकिन दान कैसा होना चाहिए, जो आपने कमाया जो भी है जो बेस्ट चीज़ है, जो बेस्ट सब, वो सब दान में देना चाहिए, क्योंकि वो सबके भोक्ता भगवान है, है ना। ऐसा नहीं कि जो हमारे काम की नहीं है जो वेस्ट है, हाँ ये दान में ले जाओ बाकी हम भोग करेंगे, नो। पहला अधिकार जो भी हम कमाएं, जो भी हम, उसको भगवान का अधिकार है। एवरीथिंग शुड बी गिवन टू द लॉर्ड। हमें केवल उतना अधिकार है जितना इस शरीर को केवल मेंटेन करने जरूरी, उससे ज्यादा करेंगे तो हमें एंटेंगल करेगा। ए सेंटली पर्सन ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ शुड नेवर लिसन टू सॉन्ग्स और म्यूजिक प्रमोटिंग मेटीरियल एंजॉयमेंट। रादर ए सेंटली पर्सन शुड केयरफुली स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ द डियर हु इज बिविल्डर्ड बाय द स्वीट म्यूजिक ऑफ द हंटर्स हॉर्न एंड इज दस कैप्चर्ड एंड किल्ड। डियर मृग, तो वो जो है हिरण, तो वो जो है वो आवाज सुनता है और फिर पकड़ा जाता है, जैसे मैंने बताया। तो उसी प्रकार से जो विशेष रूप से जो सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, जो वैरागी है, उसे ये भौतिक सिनेमा सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए। ऐसे तो किसी को भी नहीं सुनने चाहिए, भक्त तो गृहस्थ भक्त भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो केवल इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं ये सब लिरिक्स और वो साउंड, है ना। तो जो ये सब मटेरियल, जो सब सिनेमा सॉन्ग्स और ये सब हैं, तो वो सब पूरी तरह से काम भावना से ओतप्रोत होते हैं। इसलिए साधु पुरुषों को वो सब नहीं सुनना चाहिए, विशेष रूप से वैरागियों को। बिकमिंग अट्रैक्टेड टू वर्ल्डली सिंगिंग डांसिंग एंड म्यूजिकल एंटरटेनमेंट ऑफ ब्यूटिफुल विमेन, इवन द ग्रेट सेज ऋषिशृंगा द सन ऑफ मृगी फेल टोटली अंडर देयर कंट्रोल जस्ट लाइक ए पेट एनिमल। तो नृत्य, तो स्त्री को नृत्य करते देखना वो इतना बिविल्डर कर सकता है कि जैसे ऋषिशृंगा, तो उनके पिता, व्हाट वाज हिज नेम, शमिक ऋषि, उन्होंने अपने पुत्र ऋषिशृंगा को बिल्कुल एकांत में उसकी परवरिश की कि वो कभी स्त्री को देखे ही नहीं, जिससे कि आजीवन ब्रह्मचारी रह सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन पास के राज्य में अकाल पड़ा और उनको बताया गया कि ये ऋषिशृंगा बहुत नैष्ठिक एक ब्रह्मचारी है, अगर वो आपके राज्य में आ जाए तो बारिश आ जाएगी, सूखा पड़ा हुआ था। तो राजा ने फिर कुछ वैश्या प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा, और वो वहाँ जाकर बड़ी मधुर भाषा, बड़ी मधुर आवाज़ में गाने लगी और नृत्य करने लगी। तो वो जो ऋषिशृंगा था वो उनको देख करके पूरा भ्रमित हो गया और उनके कहने पर उनके साथ में चला गया। राजा अपने पिता की कुटिया को छोड़ के चला गया और मतलब आकर्षित हो गया स्त्रियों से। तो उसी प्रकार से जो स्त्री का नृत्य गान वो सब बहुत लुभाने वाला होता है, इसलिए विशेष रूप से जो वैरागी है उसको कभी ऐसा नहीं सुनना चाहिए ना देखना चाहिए। तो जो टीवी में जो सब आप देखते हैं मूवीज वो सब यही देखते हैं, गाना नृत्य कितना डेंजरस है वो सब इस केवल हमारी काम वासना को उत्तेजित करने के लिए ही बनाया गया है। कितना पैसा उसमें खर्च किया जा रहा है, कितनी उसमें बुद्धि लगाई जा रही है, बॉलीवुड हॉलीवुड वो सब इंद्रिय भोग रूपी वुड यानी जंगल में हमको फंसाने के लिए है सारे वुड, चाहे बॉलीवुड है कि हॉलीवुड। तो साधु सावधान ये सब चीज़ें साधु लोगों के लिए नहीं है, ये सब थर्ड क्लास फिफ्थ क्लास टेंथ क्लास लोगों के लिए हैं ये सब सिनेमा सॉन्ग्स। अगर काम वासना है तो उसको नियंत्रित करके गृहस्थ आश्रम में जा करके उसको नियंत्रित करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें डूब जाने के लिए। तो जानवरों से ही बदतर काम है वो। तो ये सब बहुत ही लो क्लास लोग हैं होते हैं ये सब जो देखते हैं और जो इसको बनाते हैं, अति निम्न स्तर के लोग। लेकिन आज समाज में वो सबसे ऊंचे लोग माने जाते हैं, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस, करेक्ट। फिर बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। प्रधानमंत्री अभी तक बना कोई? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ मैं, बोल रहे हैं मालनी, मैं प्राइम मिनिस्टर वो तो मैं बोल ही चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं वो, तो चीफ मिनिस्टर भी हैं ऑलरेडी बहुत सारे। एजुकेशनिस्ट मतलब ये समाज की स्थिति है कि ऐसे लोग जो इतना इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं, ऐसे लोग नेतृत्व करते हैं देश का। फिर जस्ट एज ए फिश इंसाइटेड बाय द डिजायर टू एंजॉय हिज टंग इज फैटली ट्रैप्ड ऑन द फिशरमैन्स हुक, सिमिलरली अ फुलिश पर्सन इज बिविल्डर्ड बाय एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग अर्जीज ऑफ द टंग एंड द स्विम, जीवा मछली। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण भी श्लोक है, बाय फास्टिंग लर्नेड मैन क्विकली ब्रिंग ऑल ऑफ द सेंसेस एक्सेप्ट द टंग अंडर कंट्रोल, बिकॉज बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम ईटिंग सच मैन आर एफ्लेक्टेड विद एन इंक्रीज डिजायर टू ग्रेटिफाई द सेंस ऑफ टेस्ट। सारी इंद्रियां वश में आ सकती हैं कैसे? टेस्ट कंट्रोल, जीवा को वश में करने से सारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, इसलिए हम लोग प्रसाद देते समय मंत्र उच्चारण करते हैं, शरीरा अविद्या जाल जाडेन्द्रिया तायका जीवे फैले विषय साकरे तारा मध्य जिह्वा यति, उन सभी के बीच में जिह्वा। हाँ, तो अगर ये जिह्वा कंट्रोल हो जाए तो बाकी सब इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, इसलिए जिह्वा को वश में करना बहुत जरूरी है। अगर हम जिह्वा को वश में नहीं कर पाए तो बाकी इंद्रियों को वश में करने के प्रयास सब विफल होंगे। अगर हम सेक्स अर्ज को वश में करना चाहते हैं और खाने में कंट्रोल नहीं है तो कभी हम सेक्स डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिह्वा को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिह्वा कैसे कंट्रोल होगी? वो केवल जिह्वा को कंट्रोल करने से जिह्वा कंट्रोल में नहीं होती है, बल्कि अगर हम केवल जिह्वा को कंट्रोल करना चाहेंगे यानी फास्ट करेंगे या बिल्कुल सादा बिल्कुल टेस्टलेस कुछ चीज जिह्वा को देंगे तो धीरे धीरे जिह्वा की जो पुल है अर्ज है वो और बढ़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार हम फास्टिंग करते हैं, व्रत लेते हैं, अभी मैं कुछ स्वीट नहीं खाऊंगा एक महीना, और फिर एक महीने बाद इतना स्वीट खाते हैं जितना पूरे महीने में भी नहीं खाते उतना खा लेते हैं। तो ये टंग का ये क्वालिटी है कि इसको ऐसे कंट्रोल में करने से वो कंट्रोल में नहीं होती है, तो क्या किया जाए? तो जीवा को कंट्रोल में करना है, क्योंकि उससे बाकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, और साथ साथ जीवा को हायर टेस्ट देना है, उच्च स्वाद देना है, उससे जीवा कंट्रोल में होगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वर्जना रसोपि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जीवा को कंट्रोल में करने का तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवत प्रसाद, है ना। तो ये इसलिए हम जो गाते हैं कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जीवा बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन ये जो भगवान का प्रसाद होता है, हाँ, तो शुरू शुरू में अभी लड़ाई था टेस्टी के लिए, प्रसाद टेस्टी चीज के लिए, तो यस ओके, भगवान का जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से बहुत टेस्टी है, क्योंकि भगवान ने इसको चखा है। तो वो प्रसाद ग्रहण करने से हायर टेस्ट हमको जो मिलता है, उससे जीवा की जो अर्ज है वो कंट्रोल होती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से और अपना जीवन भगवान को की सेवा में लगाने से, हाँ, विशेष रूप से जीवा हरे कृष्ण महामंत्र दो काम होते हैं, जीवा के बोलना और टेस्ट करना। तो प्रसाद, केवल प्रसाद, ऐसा नहीं प्रसाद भी ले लिया फिर इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, नॉट लाइक दैट, ओनली प्रसाद हम। तो इसलिए प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है, उसको लेने से हमारी जीवा कंट्रोल में होगी। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि प्रसाद के नाम पर हम लोग अभी लाइसेंस जैसे हमको मिल गया हो, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम अल्टीमेटली हमारा हेतु है कि हम इंद्रियां हमारी वश में होनी चाहिए। प्रसाद एक्चुअली तो सेवा के दृष्टि से हमें उसके ऑनर करना चाहिए, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दिमाग में और वो भावना होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि अभी हम हमारी जीवा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम ये प्रसाद को पूरी सही चेतना में तो ऑनर नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन ये प्रार्थना के साथ कि हम नहीं कर पा रहे हैं सही चेतना में, लेकिन कृपया भगवान आप कृपा करके ये प्रसाद हमें जो हम आप हमें दे रहे हैं उससे कृपा करके हमारी इंद्रियां वश में हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में वो प्रसाद सेवन करना चाहिए, तो फिर उससे ये जो हमारी जीवा है वो कंट्रोल में होगी। और हरे कृष्ण मंत्र ध्यान पूर्वक जप करने से तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जीवा का जो वेग है वो कम हो रहा है। और भक्तों को भी केवल प्रसाद लेना चाहिए, और प्रसाद में भी जितना संभव हो जितना वो टॉयलेट कर सकें उतना अननेसेसरली उत्तेजित करने वाला बहुत अधिक पकवान हमेशा विशेष रूप से वो नहीं लेने चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, बाकी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी और जीवा भी कंट्रोल में होगी, जिससे सारी की सारी इंद्रियां अंधता वश में आएंगी। तो अल्टीमेटली तो भगवान की शरण में जाने से कंट्रोल होंगी, और साधना के समय में, साधन के समय में, साधन भक्ति के समय में तो हमें अननेसेसरी अपनी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करना है। तो आँखों को उत्तेजित नहीं करना है, ऐसी परिस्थिति रखना है कि हम उसको उत्तेजित नहीं होने दें, प्रयास करना है अपनी तरफ से, वो भी एक है। और धीरे धीरे भक्ति करने से अंततः वो स्वाभाविक रूप से कंट्रोल में होंगी, ठीक है। ऑल द वन मे कंकर ऑल द अदर सेंसेस एज लॉन्ग एज द टंग इज नॉट कंकर्ड इट कैन नॉट बी सेड दैट वन हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसेस। सभी इंद्रियां वश में है, लेकिन जब तक जीवा वश में नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते कि उसकी इंद्रियां वश में है, क्योंकि यही मास्टर इंद्रिय है जीवा। कई लोग हमने देखे हैं बहुत तपस्वी हैं, ये हैं बहुत है, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। ऐसी मैनी एग्जाम्पल, दे कैन नॉट स्टे ब्रह्मचारी, जिसका जीवा पे बिल्कुल अनियंत्रित है। इवन प्रसाद के लिए भी अगर वो ऐसे कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, कम से कम वैरागी नहीं रह सकते वो लोग। हाउएवर इफ वन इज एबल टू कंट्रोल द टंग देन वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल कंट्रोल ऑफ ऑल द सेंसेस। ओके, हियर वी विल स्टॉप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमने आज देखी। तो सार रूप में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है यदि हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, और उसके लिए कंटेम्पलेशन, विचारवान बनना चाहिए। भगवान बताते हैं भागवतम में क्या शब्द है, नहीं 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 कंटेम्पलेशन के लिए, अनिवेक्षा समथिंग, कंटेम्पलेट, ये चीजों को देख करके हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए, अरे ये पैसा कमाने से, अत्यधिक इंद्रिय भोग करने से क्या होता है, कंटेम्पलेट। सुनते हैं जो भी आप सुन रहे हैं उस पर विचार कीजिए, चिंतन, चिंतन कीजिए, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उस पर चिंतन कीजिए, है ना। तो देखना तो जानवर भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारे को पीछे एक बुद्धि दी है, विवेक, जिससे हमको जो देखते हैं उसके एनालाइज करना चाहिए। हाँ, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं सुखी रहने के लिए, लेकिन सुखी तो है नहीं, चिंता में ग्रस्त हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूं, ऐसे विचार करना चाहिए, ऐसे हम सीखते हैं। और अगर बेवकूफ़ की तरह से ऐसे बस आंखें जानवर की तरह से रख के, कान मृग की तरह से चलेंगे, तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सीखने के लिए ये कंटेम्परेशन जरूरी है। रियलाइजेशन उससे आता है जब हम विचार करते हैं, ऐसा हो रहा है, एंड व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस, व्हाई शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो ये सब सुन के विचार कीजिए अभी इसके ऊपर। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी कीजिए। यस, प्रफुल इज फ्रॉम वेयर? ओके, लाइव, ओके। I am a new fighting Krishna consciousness.
My mind always tends to convince me that Srila Prabhupada should be my only and only guru. What should I do? Is it good for me if I abide Srila Prabhupada's instruction?
100%, why not? अगर आप प्रभुपाद के instructions को abide करेंगे तो आपका भला ही होगा, निश्चित भला होगा।
To speak in truth, living a life of celibacy in midst of civilization where sexuality is openly advertised seems dangerous. What is the hope then for me?
तो ये आजकल का समय है जिसमें कि सेक्सुअलिटी ओवरली इम्फेसाइज्ड है, उसमें सेलिबेसी, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना बड़ा खतरनाक लग सकता है। ये प्रश्न है कि तो इसलिए अगर कोई केवल ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास कर रहा है बिना कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के, तो वो बहुत डेंजरस है, जैसे ऋषि श्रृंगा का हुआ। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उनके भक्तों के माध्यम से, तो हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सकते हैं। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है और संन्यास यानी कि आजीवन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में भी हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी तो सबको पालन करना चाहिए। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कहलाता है यदि वो धर्म के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए अगर वो स्त्री संग करता है, वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। तो वो हर व्यक्ति को भी देखना होगा कि उसका स्वभाव से वो क्या आजीवन ब्रह्मचारी रह सकेगा या गृहस्थ, तो वो भी आवश्यक है जानना, समझना। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आश्रम के अनुरूप ब्रह्मचारी व्रत का पालन होना चाहिए, और वो संभव है अगर हम भक्ति में संलग्न हैं तो। और ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं गृहस्थों के और ब्रह्मचारी या सन्यासियों के जो वर्तमान समय में कलयुग में ऐसा कर पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कृपा से। तो उनका उदाहरण लेकर के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उनके लिए संभव है तो हमारे लिए क्यों नहीं। वो हमें बता रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, तो हमें उनकी प्रार्थना करते हुए इस पथ पर आगे चलना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, श्री प्रभुपाद की जय।